लगाए के मुख से कछु न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। सुने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सुन रात गवाई सो के, दुख में सुमिरन तब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास की, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। सुन रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सुन रात गवाई सोए के।
ओम शांति। अभी के सत्र में हमारे बीच बधा रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी इंदिरा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप महाराष्ट्र गोंदिया से निकले, ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री ली है और साथ साथ अपनी संस्था द्वारा जो वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी आपने अन्नमलाई यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री ली है। 1987 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1998 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आरंभ के 5 वर्ष आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 2001 में आपने ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित मनोबल एवं मनसा सेवा नामक पुस्तक लिखने के आप निमित्त बने, जिसका विमोचन अव्यक्त बाप दादा के हस्तकमल द्वारा करवाया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक नागपुर एवं मुंबई गामदेवी सेवा केंद्रों पर रहकर आपने ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव किया। 2009 से लगभग 14 वर्षों से आप स्थायी रूप से पांडव भवन ग्लोबल ऑफिस भी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले विजिटर्स, डबल फॉरेनर्स, बीके भाई बहनों की सेवाओं में आप सदा उपस्थित रहते हैं। साथ साथ उनके लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम का भी आप कुशल कोऑर्डिनेशन करते हैं। आप एक कुशल राजयोगा शिक्षिका है। शांतिवन हेडक्वार्टर के परिसर में चलने वाले शिविरों में आप सेशंस लेते हो, भट्टियों में क्लासेस भी करवाते हैं। आप ज्ञान को बहुत सरल कर उनकी गहराई तक ले जाते हो ताकि ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझकर अपने जीवन में धारण कर सके। तो आज एक खास विषय है, कौड़ी से हृदय तुल्य जीवन। तो इसी विषय पर दीदी जी प्रकाश डालेंगे। सुनते हैं आदरणीय इंदिरा दीदी जी से।
ओम शांति। विषय बहुत सुंदर है, कौड़ी से हीरे तुल्य जीवन। और इस विषय की प्रेरणा आज की मुरली, कल की मुरली, आज की मुरली का गीत क्या था जो अभी अभी हमने सुना? तूने रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए कर, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। और कल तो मीठे बच्चों को बाबा ने पहली लाइन ये कह दी कि ये जन्म तुम्हारा कौड़ी से हीरे तुल्य है। ईश्वर की गोद पाना माना ही हीरे जैसा बनना, श्रीमत पर चलने से ही हीरे जैसे बनते हो। तो हमें हीरा हम बन गए हैं या बन रहे हैं? हाँ, बन गए। जो समझते हैं हम बन चुके हैं वे हाथ खड़ा करें, बहुत अच्छी बात। और जो समझ रहे हैं कि अभी हीरा बनने की प्रोसेस में है, हम उस प्रक्रिया में है, बहुत अच्छा। तो जो बन गए हैं वो बहुत कम हाथ है, जो इस बनने की प्रोसेस में है वो हाथ बहुत ज्यादा है। बाबा तो अवश्य कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम वरदाता हो। जगदीश भाई की क्लासेस जब हम सुनते थे तो जगदीश भाई कहा करते थे, पता है अव्यक्त मुरली में बाबा समझा समझा क्यों बोलते हैं? समझा समझा के फिर पूछते हैं, समझा क्यों पूछते हैं? हाँ, क्योंकि कई बार हम भी किसी को कुछ बताते हैं और हमें आइडिया लग जाती है, उसको समझा तो है नहीं, पर यूं जरूर कर रहा है। समझा आपको, ऐसे पूछना पड़ता है। तो बाबा भी, बाबा को पता है ना, और इसीलिए बाबा कहते हैं समझा। और जगदीश भाई कहा करते थे, बाबा हमें वरदान देते इसका मतलब ये नहीं कि हम बन चुके हैं, बल्कि वरदान देकर बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन से ये दिखना चाहिए। अब जिन्होंने भी कहा कि हम बन गए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा कौड़ी जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? जिसका कोई मोल नहीं, और हीरा मतलब जो अनमोल है, इतना अंतर है। लेकिन फिर जितनी ही वस्तु अनमोल होती है उतना ही उसकी भेंट में नकली भी तैयार कर दिया जाता है, ताकि नकली बेचकर वो असली वाला रेट कमा लिया जाए, करते हैं ना लोग, और इसलिए उसकी पहचान भी होनी चाहिए होती है। यहां तक कि देखो, ये सोने की अंगूठी, मैं कहूं कि मेरी सोने की अंगूठी है और मेरे जीवन में समझो किसी कारण से कुछ पैसे की बहुत दिक्कत आई है, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है कि मैं इसको बेच दूं और इससे जो पैसा मिले मैं उससे अपना जहां दिक्कत आई हूं वहां लगा दूं। अब मैं जाऊं सुनार के पास और कह दूं, भाई साहब भाई साहब, ये मेरी अंगूठी है ना 24 कैरेट प्योर है और यह है ना 10 ग्राम है, 10 ग्राम का जो आज की डेट में 24 कैरेट का वजन है ना, आप प्लीज मुझे दे दो, मेरे कहने मात्र से दे देगा? वो दोनों काम करेगा, वजन भी लेगा और उसकी शुद्धि की भी जांच करेगा कि वास्तव में 24 कैरेट है या उससे कम है, और फिर जितना वजन होगा, जितना कैरेट होगा वो वाला दाम देगा, चाहे मैं कितना ही बोलती रहूं नहीं भाई साहब ये इतने ग्राम की है, इस 24 कैरेट की नहीं मानेगा, वो कहेगा हमारे पास जो सोने को सोने के परखने की जो कसौटी है उसमें सही नहीं उतर रहा है और इसलिए हम आपको उतना मूल्य नहीं दे सकते, हमें माफ कीजिए अगर आपको नहीं पड़ता है आप किसी दूसरी सुनार के पास चले जाइए, क्योंकि जितनी चीज मूल्यवान उतना नकलीपना भी लोग खड़ा कर देते हैं और इसलिए उसकी कसौटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जैसे हमने पहले कह दिया कि कौड़ी माना कोई मूल्य नहीं और हीरा माना मूल्यवान और इसलिए नकली खड़े हो जाते हैं, तो अब बताइए जैसे सोने की हमने बताई कसौटी करेगा, ऐसे हीरे की कसौटी क्या होती है? हाँ, हीरे की कसौटी क्या होती, कैसे हम समझ ले ये हीरा प्योर है, असली है? इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां आती है, बहुत वैरायटी कहानियां। क्यों? क्योंकि इसके पहचान की तरीके भी अलग अलग है। एक तरीका होता है कि वो कहानी आती है जी, शीशा को काट देगा, तो ये पहला पहचान, ठीक है, ये पहली पहचान कि हीरा सबसे कठोर रत्न माना गया, सबसे कठोर, बहुत हार्ड होता है। वो दूसरे को खरोच लगा के तोड़ सकता है पर खुद को खरोच आए टूट जाए वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि सर्दियों के दिन में अगर मेज पर दो बाहर खुले में बैठे हो, सूर्य भगवान भास्कर की गर्मी का आनंद ले रहे हो और बाहर टेबल पे मेज पर एक असली और नकली हीरे को रख दिया जाए और कह दिया जाए इसको पहचानो, तो कैसे पहचानेंगे? कहानी आती है पर मैं कहानी में नहीं जाऊंगी, तो कहानी लंबी हो जाएगी, फिर हमारा मैटर जो जो मेन हमें बताना है वो पीछे रह जाएगा। तो उसमें आता है कहानी में कि बहुत लोग उसको चेक किया पर बता नहीं पाए। आखिर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन आप मुझे एक चांस दीजिए कि मैं आपको बता सकूं कि ये हीरा असली है या नकली, और वो अंधा व्यक्ति आकर दोनों को एक एक हाथ में उठा लेता है और उठाने के बाद पल भर के लिए रुकता है और उसके बाद घोषणा कर देता है कि मेरे बाएं हाथ में पकड़ा हुआ हीरा असली है, मतलब इसको बायां कहते दाया, राइट हैंड, मेरे राइट हैंड में पकड़ा हुआ हीरा असली है, लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ हीरा नकली है, और जो लेकर आया था जिसने आके मेज पे रखा था और कहा था कि राजन आपके दरबार में कोई है ऐसा जो पहचाने, तो उसको उसको सही लगा। बहुत समय से वो इस प्रकार से कई दरबारों में जाकर खूब पैसा कमाया, लेकिन इस दरबार में पारखी मिल गया। इसके पहले कई जो हीरा पारखी थे उन्होंने परखा पर बता नहीं सके। अंधे व्यक्ति से पूछा गया तुम देख भी नहीं पा रहे हो फिर भी तुमने सत्य कैसे बता दिया, क्योंकि वो जो लेकर आया था व्यक्ति मेज पर आके रखे थे राजा के, उसने कहा मेरे पास भी हीरे की परख है पर मेरी परख दूसरी है और इसकी परख दूसरी है। तो उसको पूछा गया कि तुमने कैसे परखा, मैं तो परखता हूं कि फेंकता हूं, टूटा तो कांच है, नहीं टूटा तो हीरा है, मेरी ये परख थी, पर तुमने तो फेंका भी नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आपने सत्य बता दिया, आप कैसे बता पाए? कहते हैं बहुत सीधी सी बात है, भगवान भास्कर की उष्णता के नीचे बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके असली हीरा ठंडा है और नकली हीरा गर्म हो चुका है, जो मैंने हाथ पे रखने से स्पर्श से मैंने अनुभव किया। तो असली हीरा गर्म नहीं होता है, और यहां तक कहते हैं कि कितना टेम्परेचर वो सह सकता है। आप सोचो, हम सर्दियों के दिन में बाहर बैठे और भगवान भास्कर की उष्णता आए, कितनी होगी उष्णता, कितना टेम्परेचर होगा? मिनिमम, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना। जब कंटिन्यूस बैठे रहते हैं और आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाता है, हम कहते हैं अभी चलते हैं अंदर, तो आखिर कितना होगा? 100 के नीचे ही होगा ना। कोई बॉइलिंग तो टेम्परेचर नहीं होगा? बॉइलिंग होता तो हमारा फफोले निकल आते हमारे स्किन पर। लेकिन हीरा 600 सेल्सियस डिग्री तक अपने आकार को नहीं बदलता है। कौन सा हीरा? जो असली हीरा। लेकिन नकली हीरा अगर कांच वाला हो, उस टेम्परेचर से पहले ही उसका आकार विकार सब बदल, आकार विकार में बदल जाएगा, उसकी विकृति हो जाएगी। और भी उसकी हीरे की पहचान है कि असली हीरा जो होगा, पानी के ग्लास में अगर आप डालें तो डूब जाएगा, जाके सतह पर बैठ जाएगा। लेकिन नकली हीरा या तो पानी की ऊपरी सतह पर तैरेगा या ग्लास के मध्य में जाके तैरेगा, पर तले पे नहीं जाएगा, ग्लास के तले पर जाके नहीं बैठेगा। ऊपर जो पानी जहां तक है उस सतह पर या बीच में रहेगा। और भी इसकी पहचान क्या है? कहते हैं कि जैसे सर्दियों के दिनों में हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो मुंह से भाप निकलती है ना, तो दर्पण के सामने जाकर मुंह खोले तो क्या होगा? उस दर्पण पे दिखाई देगी भाप, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। दर्पण की जो क्लीन था, क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था, इस भाप वहां पे चिपक गई और उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, अर्थात कोहरे का, भाप का कांच पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हीरे को अगर आप मुख के सामने लाओ, असली हीरे को, और उसको भाप उसको डालो अपने मुख की, उस पर टिकेगी ही नहीं। ये उसकी पहचान है। और भी पहचान है उसकी कि हीरे के जो कोण होते हैं ना, एंगल्स होते हैं ना, उस एंगल से आर पार देखेंगे तो जैसे प्रिज्म पर एक एंड पर सूर्य की लाइट पड़े तो दूसरे एंड से जब वो लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी? इंद्रधनुष के रूप में सतरंग दिखाई देंगे। ऐसे ही जो असली हीरा होगा, उसके एंगल से जब हम आर पार देखेंगे तो अगले पार पे इंद्रधनुष के सतरंग दिखाई देने लग जाएंगे। और क्या पहचान है हीरे की? कि हीरा लाइट को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कब करेगा? असली हीरा होगा तो एक तो चमकेगा, लेकिन असली हीरा अंधेरे में भी चमकेगा, सिर्फ उजाले में नहीं। इस पर भी कहानियां हैं, तो पर उस कहानी के विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो लाया गया एक हीरा बहुत सुंदर चांदी की डिब्बी में रखकर, और कहा गया कि हमें ये हीरा खरीदना है, राजन आपके दरबार में बहुत अच्छे पारखी है, आप मुझे इसका परख करके बता दो कि कितना मूल्य होगा। राजा ने, मैं शॉर्ट में सुना रही हूं कहानी को, राजा ने अपने पारखियों को बुलाया और हर पारखी कहता है कि ये तो अलौकिक हीरा है, इसका तो मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता, इतना अनमोल है। पर राजा को अनमोल तो है, वो तो समझ में आ रहा है, पर इतना भी अनमोल नहीं कि रेट भी नहीं लगा सके। तो राजा तो चिंता में पड़ गया। इतने में कहते तेनाली राम आया और कहते राजन मुझे एक चांस दे दीजिए। तो राजा का मंत्री कहता है, मूर्ख, इतने अच्छे अच्छे हीरे पारखी नहीं बता पाए राजा को ठीक से, तू क्या बताएगा मूर्ख। कहता मुझे दे तो दो ना एक चांस। और राजा ने कहा मंत्री से इसको दे दिया जाए चांस। और इसने क्या किया, सर्दियों के दिन थे तब भी ऊनी लबादा उसको पहना हुआ था, उस ऊनी लबादे को उतारा और उसके अंदर उस हीरे को डाला और उसको अंदर डाल के उसके साथ कुछ बुदबुदा रहा था। राजा ने कहा तेनालीराम क्या कर रहे हो तुम, क्यों उसको हीरे को उसके अंदर डाल दिया। कहते राजन मैं इस हीरे से दिल से पूछ रहा हूं, तुम बताओ कि तुम्हारा मूल्य क्या है। तो फिर उसने कहा तो बात बताओ, तुम्हें क्या मूल्य बताया, हीरे ने तुम्हारे दिल की बात सुन ली। कहता है हाँ, तो बताओ क्या मूल्य है। कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद हमारे संवाद पर आपको विश्वास न हो। और इसलिए वो राजा को, सम्राट को और दरबारियों को एक अंधेरे कमरे में लेकर गया और वहां पर एक मेज रखी थी और लबादे में से, उस ऊनी लबादे में से उस हीरे को निकाला और उस मेज पर रखा और उनसे पूछा कि ये हीरा जो मैंने मेज पर रखा है वो कौन से हिस्से में रखा है, जरा आप मुझे बताइए। लेकिन कोई नहीं बता पाया, क्यों, क्योंकि कमरा अंधेरा है और हीरा नकली है। उजाले में तो चमक रहा था परंतु अंधेरे में तो ऑर्डिनरी पत्थर की तरह उसमें कोई चमक नहीं थी। और कहा ये हीरा नहीं, ये तो इसका कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं। समझ में आई बात, कौड़ी बाहर से आजकल कहते हैं ना आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी, ओरिजिनल से भी रियल से भी कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और ऐसे ही हीरे को भी इतना चालाकी से वो पॉलिश किया जाता है कि उजाले में रियल वाले से भी ज्यादा लाइट को परावर्तित करे। जैसे दूध वाले भी होते हैं ना, तो हमें याद है अपने बचपन की बात कि दूध वाले दूध जब लेके आते तो शुरू में एक जमाना था कि बेईमानी नहीं होती थी, गाय भैंस जिस प्रकार का दूध देती है जिस फॉर्म में बिना मिलावट किए उसको बेचा करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बेईमानी शुरू हुई, लेकिन फिर उस बेईमानी शुरू होने के दौर में भी कुछ लोगों ने ईमानदारी कायम रखी और कुछ लोगों ने बेईमानी को अपना लिया। तो हमारे घर में जो दूध वाला आता था ना, तो कभी बाप आता था और कभी बेटा आता था डिलीवरी करने के लिए। जिस दिन बाप आता था उस दिन दूध अच्छा होता था, लेकिन जिस दिन बेटा आता था उस दिन दूध अच्छा नहीं होता था। तो बाप से बात की गई कि भाई दूध अच्छा नहीं आता है। कहा नहीं, मैं आपके घर के लिए एक सेपरेट, जो उनके कंटेनर्स होते हैं, मैंने आपके घर का कंटेनर उनको सेपरेट देता हूं क्योंकि आपके पास मुझे उचित मूल्य मिलता है, तो मैं क्यों मिलावट करूं, मैं एक सेपरेट कंटेनर भेजता हूं। लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसा, मैं पता करूंगा। हमने कहा ठीक है। तो कुछ दिन तक हमने चेक, और होता क्या था कि जिस दिन बेटा दूध लाता था उस दिन दूध में जो एक नाप होती है ना, एक लीटर में इतनी शक्कर जाने से इतनी मिठास बनती है, तो उतनी नाप से जब शक्कर डालते थे हम, लेकिन वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता था। तो एक दूसरे से पूछते थे तुमने भी शक्कर डाली क्या, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मीठा हो गया। कहते नहीं, बस एक नहीं डाला है। फिर इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मीठा क्यों है। तो फिर क्या किया, लैक्टोमीटर आता है दूध की कसौटी पर रखने के लिए, लैक्टोमीटर आता है, हमने बाजार से लैक्टोमीटर खरीद के लाया। और लैक्टोमीटर से उसकी चेकिंग करने लगे और जब चेकिंग की है इम्प्योर और जो उसका मार्किंग होता है ना रेड का ये तो उससे भी ऊपर जाए रियल से भी रियल और वहां से डाउट हमें क्रिएट हो गया अगर रियल है तो उसको उस मार्किंग पे रुकना चाहिए ना उससे आगे थोड़ी जाना चाहिए और वहां से फिर हमने चेक किया बिना शक्कर डाले पहले चेक कर लो दूध को दूध तो पहला ही मीठा है और उस जो एक्स्ट्रा मिठास उसमें जा रही है उसके कारण उस दूध की डेंसिटी चेंज हो रही है और इस कारण से वो लैक्टोमीटर रियल से भी रियल दिखा रहा है उसका लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और इस प्रकार से उसकी बेईमानी पकड़ी गई कहा ना आर्टिफिशियल में भी इतनी चालाकी की जाती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चले पर सामने वाला भी अगर चतुर हो तो फिर पकड़ लेगा उसको है ना तो ऐसे ही अगर हम समझते हैं कि हम हीरे बन गए हैं हम अपने आप को चेक करें जब हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां आती है कि जहां मुझे लगता है मैं तो डूबने जा रहा हूं इन परिस्थितियों में नहीं डूबना माना डिप्रेशन के गर्त में डूब जाना तो हम कहेंगे मैं रियल डायमंड बना हूं कहने को तो मैं समान को रिपीट करता रहूं मैं हीरा हूं मैं हीरा हूं आज का समान भी हमने इसीलिए दिया क्या समान था आज का मैं आत्मा रूहानी लाइट माइट फैलाने वाली सच्चा हीरा हूं लेकिन अगर मैं डिप्रेशन के गर्त में जा रहा हूं क्या मैं रूहानी लाइट माइट फैला रहा हूं एक डिप्रेस्ड व्यक्ति रूहानी लाइट माइट फैलाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड वो कहने को कुछ भी कह दे लेकिन फेस बताएगा या नहीं बताएगा फेस तो सब कुछ बता देता है कई परिस्थितियों में हम गर्म हो जाते हैं कि बात ही ऐसी थी बहन जी गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा हाँ बाबा कई बार कहते ना मुरलियों में हमारी डायलॉग बाबा सब सुनते और बाबा बोलते बच्चे कहते बाबा इस जगह पर आप भी होते ना आपको भी गुस्सा आ जाता अब तो बाबा निराकार ऊपर जाके बैठते आपको क्या समझता है कि प्रैक्टिकल जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती है आप तो बस ज्ञान दे देते हो प्रैक्टिकल में तो फेस हमें करना पड़ता है आप मुरलियों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बाबा हमारे डायलॉग फिर से रिपीट करके सुनाता है मुरलियों में और वो जब बाबा सुनाता है जब हम पढ़ते हैं तो खूब अपने ऊपर क्या आती है हंसी आती है तो क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान में आने से पहले हाँ बहन जी गुस्से जैसी बात थी परंतु ज्ञान में आने के बाद भी अगर हम यही कहें मतलब हम गर्म अब भी हो रहे हैं तो ज्ञान से पहले तो नकली ही रहते लेकिन अब ज्ञान की बात तो मैंने असली हीरा कबूल किया है तो अब मुझे गर्म होना चाहिए तो मैं अपने आप को चेक करूं मैं गर्म होती हूं मैं गर्म होती हूं या नहीं होती हूं ये चेक पॉइंट्स है अपने आप को चेक करने के लिए हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं ये भक्ति क्या लक्ष्य है महसूसता द्वारा संपूर्णता और उसके बीच में आता है महसूसता से चेंज का संकल्प और उस चेंज के संकल्प में दृढ़ता के आधार से अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना जैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता अब सीधा ब्राह्मण से देवता नहीं बनने जा रहे हैं बीच में आपको फरिश्ता बनना है ऐसे सीधा महसूसता से संपूर्ण नहीं बनने जा रहे हो महसूसता से अब फील कर रहे हो मेरे में अभी भी वो कुछ है जो मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, जो मूल संस्कार है, उसके विपरीत है। चेक करने पर पाएंगे ना हम, और फिर जब चेक करने पर पाया और फिर अपने आप को लक्ष्य याद दिलाया, लक्ष्य क्या है मेरा, संपूर्ण बनना। कितना संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनना है ना? कितना गुणों से संपन्न? सर्व गुणों से संपन्न। लेकिन हूं क्या अभी मैं? अवगुणों से संपन्न। कला माना, चंद्रमा की कला क्या होती है? लाइट, पूरा खिला हुआ। मेरे जीवन से दिव्यता कितनी झलक रही है, कितने परसेंटेज में आई है? बनना तो 16 कला है, लेकिन दिव्यता की झलक का परसेंटेज है कितना? ये भट्टी ऐसे ही नहीं रखी जाती है। तभी हमने आपको सुबह कह दिया, बोलना पड़ा मुझे, चाहती नहीं थी पर फिर भी बोला, क्योंकि देखा वाचा बहुत अनुभव हो रही है। आज भी जब बाबा ने मुरली में ये जो गीत था, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए के, हीरा जैसा जन्म अमोल कौड़ी भर ले जाए, और बाबा की पहले साकार मूल्य इसी गीत के आधार पर चलती थी, और उस गीत में आपने सुना, बाहर के पट बंद करो, भीतर के पट खोलो। और उसी चीज को बाबा ने कहा, बाहर मुखी नहीं, अंतर्मुखी बनो। और जब हम वाचा में आए हैं, मतलब वो क्लियर है कि अभी हम बाहर मुखी हैं। वाणी से परे जाना ही तो अंतर्मुखी, आज की मुरली में बाबा ने कह दिया, वाणी से परे जाना ही अंतर्मुखी होना है। हम तो खूब वाचा में आ रहे हैं। हमने बेशक छुट्टी दी थी, पर कितनी छुट्टी दी थी? जितना आवश्यक है। अंडरलाइन कराया था, उस आवश्यक में भी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कल हम ऑफिस में बैठे थे, बाबा की कुटिया तो हमारे सामने ही है, और खूब वाचा हो रही थी, और किसी भाई की मुझे आवाज सुनाई थी, और वो भाई उनको रिमाइंड करा रहा था। मुझे नहीं पता कौन भाई था और कौन वहां खड़े थे भाई बहन जिनकी आवाज थी, लेकिन मेरे कानों में वो आवाज पड़ी, और उनको कहा उस भाई ने, आपको कितनी बार अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है, मौन में रहो, आप भट्टी में आए हो, आप कुछ पालन नहीं कर रहे हो। तभी हमको कहना पड़ा कि लक्ष्य भट्टी में आने का है या सिर्फ एक चेंज, बहुत दिनों से बैठे हैं घर में, कुछ चेंज हो जाए उसके लिए आए हैं। तो भट्टी में आना भी चेंज ही होता है, परंतु यहां पे जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो बाहरी चेंज, और भट्टी माना भीतर का चेंज, भीतर का परिवर्तन। तो भीतर में बैठ जाकर एकांत के लिए समय दिया है हमने आपको, कि 5 से 6 कोई आपके बीच में आकर कोई कमेंट्री तक नहीं कराएगा, ताकि आप खुद खुद के साथ कमेंट्री करो, खुद खुद के साथ बैठकर, ऐसे जैसे बैठे हैं ना सीट पे। बाबा कहते हैं ना, राज्य अधिकारी स्वराज्य अधिकारी। तो किसकी स्वराज्य अधिकारी, किस पर मेरा राज्य है? इंद्रियों पर। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठे और इंद्रियों को ऐसे सामने देखे, ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे और पूछते थे अपने दरबारियों से, तुमने आज क्या किया, दल बदलू तो नहीं कर दिया? नहीं, जैसे पार्टियों में दल बदलू होते हैं ना, है मन तूने आज क्या किया, बुद्धि तूने आज क्या किया, किसके पक्ष में न्याय दे दिया, संस्कार मायावी संस्कार तुम फिर से हावी हो गए, मेरे ईश्वरीय संस्कारों को तुमने जीत पा ली आज, आज तो तुमने जीत पा ली, अब इसके बाद तुम्हें जीत पाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये बैठकर अपने से बात करनी होती, ऐसे दूर जैसे अभी हम बैठे हैं यहां पे और आप सामने, तभी तो बातचीत हो सकती है, अन्यथा से चिपक के बैठने से हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना। तो ऐसे भीतर में जब जाए, मैं आत्मा राजा अलग और दृश्य आ रहे हैं अलग, मैं दृष्टा हूं, थोड़ी देर उनसे बातचीत करके अपने संकल्प को दृढ़ करो, और उसके बाद बहुत जरूरी भी नहीं है कि सारा समय सिर्फ वो रिपीट करता रहूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या दृश्य आ रहे हैं, आने दो और जाने दो, आने दो, और अपने अंदर की सच्चाई दिख रही है ना आपको कि मेरा कृत्य क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरा भाव क्या है, क्योंकि और कोई को पता ना चले भाव मेरा। कृत्य तो बाहर से बहुत अच्छा दिख सकता है, पर भाव तो भीतर का मुझे ही पता है कि मैंने अगर इसको भाव आज मदद की है, क्या वो सचमुच मदद का भाव था या इसके पीछे भी मुझे इसको गिराने का भाव है। होता है ना कई बार कि अब की बार इसको मदद कर दो, इसको समझ में आए कि ये मेरा मददगार है, ऐसे बोल बोल के उसके अंदर का सब निकलवाऊंगा मैं, मददगार उसको बता बता के, और सारा निकाल दिया, अब कहा कि कहां का तू मददगार, कहां का तू मेरे को अच्छा समझ रहा है, मेरा तो भाव अंदर का गिराने का था। तो सारे भाव भी आएंगे अंदर, मैंने कोई कर्म किया है किसी के प्रति, मैंने कोई विचार किया है किसी के प्रति, उसके पीछे का भाव क्या था मेरा, क्योंकि भाव बीज है। जब तक बीज को नष्ट नहीं किया जाएगा, विचारों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जैसा होगा बीज वैसा ही तो फल आने वाला है। भाव कहां उत्पन्न होते हैं, कर्म कहां होते हैं, इंद्रियों के द्वारा, शरीर से। विचार किससे होते हैं, मन के द्वारा, और भाव किससे होते हैं भाई, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, विचार के लिए मन है, न्याय के लिए बुद्धि है, भाव के लिए क्या है हमारे पास, भाव के लिए क्या है हमारे पास, भाव कहां से उपजता है, हृदय से, हृदय से उपजता है ना, परंतु हृदय कौन सा, ये मुट्ठी पर हृदय जो यहां पे फिजिकल बॉडी में होता है वो नहीं, हृदय कहां होता है, हृदय कहां होता है, कर्म का लेवल सबसे ऊपरी लेवल है, विचार का लेवल उससे थोड़ा अंदर का लेवल है, अंदर का तल है, अंदर की सतह है, और भाव की सतह उससे भी अंदर है। तो फिर कहां होगा हृदय, अगर विचार से भी अंदर का तल है वो भाव, तो कहां होगा हृदय, कहां होगा हृदय, नहीं पता कुछ भी। अच्छा, पहले मन से विचार करते हैं, आपने दो शब्द सुने हैं, मन और चित्त, सुने हैं दो शब्द, मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, नहीं पता है। ज्ञान की जितनी गहराई में जाएंगे उतना पुरुषार्थ अच्छा होता है। इसलिए इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, वरना गीत ने ही कहा, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए कर। अगर ज्ञान की रीति से रात और दिन को हम उठाएं, तो बाबा के ज्ञान के अनुसार दिन है स्वर्ग और रात है नरक, अर्थात सत्युग और त्रेता युग दिन है और द्वापर युग और कलयुग रात है। तो उस दिन में हमने क्या किया, संगम पर जो हमने कर्म किया उसकी प्रालब्ध हमने खाई, तो दिवस गवायो खाए के पूरे 21 दिन हम सिर्फ खाते रहे और 21 जन्म हमारे पूरे हो गए। और फिर कहा रात गवाई सोए कर, और सोए कर मतलब क्या, और वहां पे कहा कि दिन में थे, दिन माना रोशनी, और बाबा कहते रोशनी माना ज्ञान, ज्ञान को भी रोशनी कहते। तो वहां पे कम से कम हमें ये रोशनी तो थी कि मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है। हम सोल कॉन्शियस वाली जीवन जीते हैं ना सत्युग त्रेता में, कि यहां पर जो हमने अभ्यास किया सोल कॉन्शियसनेस का, वो हमारा इतना पक्का हो गया कि अब वो वहां पर ऑटोमेटिक चल रहा है। वह अभ्यास नहीं कर रहे हम कि मैं आत्मा हूं, लेकिन यहां का अभ्यास परिपक्व हो गया, और वो परिपक्व अभ्यास अब अपने आप जीवन से छलक रहा है। जिसको कहते हैं ना कि राम 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 हनुमान ने इतना गाया कि उसके नस नस से भी आवाज क्या निकल रही है, राम राम राम, ऐसे कहते हैं ना भक्ति में, अपने आप निकल रही है, बोल नहीं रहा है। एक होता है बोलने से सुनाई दे पर बोल नहीं रहा है, पर उसके नस नस से वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो वो हमारे अंदर में इतना उस स्मृति में आ जाता है, हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। अर्जुन ने भी तो यही कहा ना, जब तक स्मृति स्वरूप नहीं था, मोह के वश था, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसका दूसरा प्रश्न खड़ा, दूसरे का उत्तर नहीं दिया तीसरा प्रश्न खड़ा, तीसरे का उत्तर नहीं मिला चौथा प्रश्न खड़ा, और आखिरकार 18वें अध्याय में कहता है अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब स्मृति में आ गई बात, मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूं, जो आप ज्ञान दे रहे हो कि अर्जुन तुम ये देह नहीं, तुम आत्मा हो, और उस स्मृति में स्थित हो जाने से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, और अब मैं उस दृष्टि से इनको नहीं देख रहा हूं, और इसलिए अब जो आदेश करोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार। लेकिन कब, जब स्मृति स्वरूप हम अपने आप से चेक करें, कहा ना अंधेरे में भी वो प्रकाशित होगा, कौन, असली हीरा। तो मैं जब प्रैक्टिस न भी करूं तो भी क्या मेरे जीवन से वो आत्मा की क्वालिटीज रेडिएट हो रही है? जरूरी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, बोलने से वहां पर शांति की किरण जाएगी? स्थित हूं नहीं और सिर्फ बोल रही हूं तो निकलेगी किरणें शांति की? भाई एक लालटेन है, बत्ती जल रही है पर कांच पूरा काला हो गया है, लेकिन चूंकि बत्ती जल रही, मैं कहूं लालटेन से देखो अभी प्रकाश बाहर आएगा, लालटेन से देखो अभी प्रकाश बाहर आएगा, लाख बार कह दो उस कांच पे जितनी देर तक कालिमा है प्रकाश आने वाला नहीं है। लेकिन अब आपने कालिमा पहुंच ली, अब आप बोल भी नहीं रहे हो, कि लालटेन से प्रकाश, लेकिन फिर भी आ रहा है। आप उसको कहो भी ना, प्रकाश मत आना भी बाहर, मत आना भी बाहर, रुकेगा आपके बोलने से? नहीं रुकेगा। क्या हम ऐसे समर्थ स्वरूप बने हैं? कौड़ी से हीरा बनना है ना, चेकिंग करनी होगी। क्या हम गर्म होते हैं परिस्थितियों में? क्या भीतर से टूट जाते हैं? क्या हम रेडिएट करते हैं आत्मा की 7 क्वालिटीज? विपरीत परिस्थिति में सब कुछ सही चल रहा है तब तो कहा ठीक ठीक, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हो सकता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहन जी हमसे प्रेम से बात कर रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बिगड़ी है तो बहन जी का तो क्रोध देखते बनता है ना। तो सच्चा हीरा सिर्फ उजाले में नहीं चमकता है, अंधेरे में भी चमकता है। क्या वहां तक मेरी स्थिति पहुंची है, ये चेक करना है। और उसके लिए कि कैसे वो हमारी स्थिति बने, और हृदय क्या है, वो चित्त क्या है, ये हमें बहुत अच्छी से समझना होता है। लेकिन अभी मैं उसके डिटेल में जाऊंगी तो एक दूसरी क्लास आरंभ हो जाएगी, क्योंकि वक्त अभी सिर्फ 10 मिनट का है मेरे पास। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि विचार के भी भीतर का तल हृदय है, और वहां से भाव उठते हैं, और वो भाव ही बीज होता है विचार का, और विचार बीज होता है कर्म का। तो उस बीज के लेवल पर जाके मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने जो फलाने के प्रति ये कर्म किया, विचार आया, उसके मूल में भाव कौन सा है? क्या वो भाव है जो बाबा कहते हैं रहम भाव रखो, करुणा भाव रखो, सबको गिरे हुए को उठाने का भाव रखो, या चढ़े हुए को गिराने का भाव है? ये मेरे से आगे निकल लिया ना, अब इसकी टांग मुझे खींचनी है, ये मेरे से आगे निकल रहा ना, अब ईर्ष्या के भाव में चल रहे हैं हम अंदर। ये चेकिंग अपने भीतर में होनी चाहिए, और एक बार चेकिंग हो जाए, रियलाइज करना, रियलाइजेशन इज द पश्चाताप। पश्चाताप के बाद वैराग्य आता है। किसके लिए वैराग्य? उस चीज के लिए जो मैंने गलत कर रहा हूं, वरना उस गलत करने के लिए वैराग्य ही नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ नहीं है। वो कहते एक राजा था, वन में शिकार करने गया, अंधेरा हो गया तो रास्ता भटक गया, तो वहीं जंगल पे किसी गरीब किसान की झोपड़ी थी, दीपक चल रहा था, तो वहां चले गया आश्रय पाने के लिए, और उससे पूछा मैं रात भर ठहर सकता हूं? उसने कहा क्यों नहीं। राजा रात भर ठहरा, खूब किसान ने खातिरदारी की, सेवा सत्कार आदर भाव खूब किया। अगले दिन उजाला हो गया, राजा अपने राज्य में, क्योंकि वो तो अंधेरे में भटका था ना, अभी तो उजाला हो गया, वो चलने को तैयार। लेकिन जाने से पहले किसान की आतिथ्य से खुश हुआ था ना, और राजा है, बिना इनाम दिए कैसे जा सकता है। का किसान को, हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हैं, और उसके परिणाम स्वरूप ये फलाना चंदन का बाग आपका, ये आपके तोहफे में है। किसान तो खुश हो गया, पर चंदन का क्या मोल होता है उसे पता नहीं था। किसान को तो थोड़ी सी नॉलेज थी, ये लकड़ी तो जला के कोयला बना दी जाती है, और उस कोयले से भी आजीविका का उपार्जन किया जा सकता है। उस बाग की लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर जलाता रहा, और कोयला बेचता रहा, और अपनी आजीविका कमाता रहा। पर एक दिन, बारिश के दिन थे, लकड़ी भीगी हुई थी, जलने वाली तो है नहीं, लेकिन वही तो उसका साधन था आजीविका का। तो कहा जल नहीं रही तो ठीक है, मैं इसको टुकड़े टुकड़े करके बेच आता हूं, जो भी दाम मिले। गया वो बेचने के लिए और वहां तो हवा चल रही थी, पवन चल रही थी, वो तो चंदन की लकड़ी थी ना, पूरी खुशबू चारों ओर के वातावरण में महक गई। और जो भी ग्राहक आए उसे खरीदने के लिए मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार। और ये हैरान हो गया, क्यों सब मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं मुझे? आखिर एक ग्राहक से अलग से होकर पूछा, अब सच सच बताओ कि इसका मूल्य क्या है और क्यों है इतना? उसने कहा ये चंदन की लकड़ी है, साधारण लकड़ी नहीं है, और इसका ये मोल होता है तो अमूल्य है। तब उसको पश्चाताप हुआ, आंखों से आंसू झर झर बहे। और तभी वहां से कहते एक संत गुजरा और कहा क्यों ऐसे आंसू बहा रहे हो? और उसने सारी व्यथा सुना दी। कहा कोई बात नहीं, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन साथ साथ सुधार करना इंसान का बहुत बड़ा धर्म है, तो अभी सुधार कर लो। और सुधार के नाम पर ही क्या किया, उस पश्चाताप के बाद उसने वैराग्य उपजा। किस बात के लिए? उन लकड़ियों को जलाने के लिए। ये तो इतनी अमूल्य चीज है, इनको मैं जला कैसे रहा हूं? अब ये काम नहीं करने वाला हूं मैं। अब क्या किया उसने, वो वन में गया और चंदन के पेड़ लगाए, और चंदन के पेड़ लगा लगा कर चंदन का जो रेट होता है उसमें बेचकर माला माल हुआ। तो दो युगों तक सत्ययुग और त्रेता में जो कि नेचुरल सोल कॉन्शियस थी तो सिर्फ प्रारब्ध खाई, लेकिन अगले दो युगों में वो सोल कॉन्शियस जीरो पे चली गई और आगे बॉडी कॉन्शियस में, अर्थात अज्ञानता में। और इसीलिए वो रात हो गई ना, और अज्ञानता के अंधकार में हमने खूब आत्मा के ओरिजिनल गुण के अपोजिट गुण डेवलप कर लिए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, और उसकी परते आत्मा के ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई। जो आत्मा क्या बिखेर रही थी, सेवन क्वालिटीज बिखेर रही थी, अब उसको इन परतों ने क्या कर दिया, ढक दिया, और वो अभी सुख शांति की किरणें निकलना बंद हो गई। और इसीलिए फिर हमने उस सुख शांति को बाहर की दुनिया में खोजना आरंभ कर दिया, पर मिला तो नहीं, और कहीं भटक भटक कर आखिर तो कोई उपाय होगा। आगे ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्ञान सुना, दिल को तसल्ली हुई कि भीतर ही है सुख शांति, परंतु उसके ऊपर लेप चढ़े हुए हैं और इसलिए वो अंदर की दिव्य सुगंध गुणों की बाहर नहीं आ रही है। इवन चंदन के साथ भी यही होता है, चंदन उच्च क्वालिटी की सुगंध मानी जाती है चंदन की, ऐसा चंदन भी जब जल के संसर्ग में पानी के संसर्ग में लंबे काल तक पड़ा रहे तो लकड़ी सड़ने लगती है और असहनीय दुर्गंध फैलने लगती है। असहनीय, जो इतनी दिव्य सुगंध बिखेरने वाला चंदन है, असहनीय दुर्गंध फैलाता है वो, लेकिन वही जो इतनी दुर्गंध फैला रहा है उस लकड़ी को निकाल कर उस दुर्गंध को कुछ देर के लिए सहना होगा। एक जो डॉक्टर बनता है ना बच्चा, मेडिकल कॉलेज में वो मृतक डेड बॉडी की स्टडी करनी पड़ती है, खूब बास आती है उनको उसमें से, तो पहले दिन तो उनको कैसे कैसे लगता है, लेकिन रोज रोज रहते रहते हैबिचुअल। ऐसे ही जब हम अंतर में जाएंगे ना, तो पहले दिन तो रिपल्शन होगा, अरे इतना सारा मेरा बेकार बेकार दिख रहा है मेरे को, उससे अच्छा तो देखना ही नहीं है मुझे। हम इसलिए नहीं बैठते अंदर झांकने को क्योंकि बहुत कुछ गलत किया हुआ है हमने, तो वो एकदम रिपल्शन आता है, क्यों देखूं मैं इसको। लेकिन वो बच्चा भी रोज रोज मालूम है कि स्टडी तो करनी है ना मुझे, नहीं तो डॉक्टर कैसे बनूंगा। ऐसे ही मैं अगर चित्त की शुद्धि नहीं करूंगा, चित्त के ऊपर ही तो लेप चढ़ा है, काम क्रोध लोभ के जो भाव चढ़े उधर ही तो चढ़े हैं, और इसको अगर साफ नहीं किया जाएगा तो अंदर की दिव्य सुगंध आत्मा की किरणें बाहर आएगी कहां से। तो ऐसी जो लकड़ी चंदन की होती है ना, वो भी इतनी असहनीय दुर्गंध से जब भर जाती है, ऐसी लकड़ी को भी सहन शक्ति रख कर अगर उस लकड़ी को बार बार घिसा जाए, जो ऊपर का सड़ा हुआ हिस्सा है घिस घिस कर निकाल दिया जाए, अब वो दिव्य सुगंध बाहर आने आरंभ हो जाती है। ऐसे ही हमें भी भीतर जाकर अपनी चेकिंग करना है, हिम्मत रखनी है मेरे अंदर ये भाव जो मेरे ओरिजिनल स्वभाव के विपरीत है, पर स्वीकार करूं, पश्चाताप करूं, तब वैराग्य जागेगा। और उस वैराग्य का मतलब ही क्या है, जो विशेष राग था उसके प्रति, वो विशेष राग अब उठ गया, अभी नहीं है उसके प्रति राग। अब किसके पास राग आ गया, जो जीवन की सच्चाई है उसके प्रति राग आ गया मुझे। तो जीवन की सच्चाई क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वाले भाव, या करुणा वाले भाव, रहम वाले भाव, सहायता वाले भाव, मदद वाले भाव, गिरे हुए को उठाने वाले भाव, क्या है जीवन की सच्चाई? सुख शांति प्रेम जो सात गुण हमें बताए, उसी से ही तो भाव तैयार हो गए। क्या मैं शांत भाव में रहता हूं विपरीत परिस्थितियों में? नहीं, तो मुझे जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, अंतर्मुखी। और उस वैराग्य में आप देखना, जब कभी पश्चाताप होता है और जब कभी ये रियलाइजेशन होती है, हम कुछ पलों के लिए अवाक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवाक। कुछ भी अंदर से निकलता, उस अवाक स्थिति में हमें पहुंचना है। उस अवाक स्थिति में पहुंचने से परमात्मा का जो सानिध्य होगा, फिर परमात्मा के सानिध्य से अपने आप मेरे ऊपर का लेप, परमात्मा की किरणें उस पर क्या करेगी, घिसने का काम करेगी, और उसका शुद्धिकरण होगा, आत्मशुद्धि होगी। और आत्मशुद्धि होते ही आत्मा की दिव्य सुगंध बाहर आने लगेगी और मैं सच्चा हीरा बनकर चमकने लगूंगा। तो बनना है ऐसा सच्चा हीरा, तो अंदर जाना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। आज शाम का भी वक्त है आपके पास, तो इस समय की कद्र करें। ऐसे नहीं, योगी तो करना है जाके बैठ के, वो तो कहीं पर भी बैठ के कर लेंगे। नहीं, एक लक्ष्य के साथ, और जब सभी उस लक्ष्य से बैठे हैं तो उस वातावरण में और एक ऊर्जा खड़ी हो जाती है। और एकांत के पल फिर तो नहीं मिलने वाले हैं, फिर तो जिम्मेवारी। साइकिल जब चलानी सीखनी होती है तो एकांत रास्ते में सीखते हैं ना पहले, उसके बाद भीड़ भड़ाके में जाते हैं। तो यहां एकांत में चेकिंग करके, पश्चाताप करके, वैराग्य डेवलप करके, उस परमात्मा के साथ वो दृढ़ संकल्प करें और कनेक्ट हो जाए, तो वो दृढ़ संकल्प दृढ़ बना रहेगा वहां जाने के बाद भी। इसको कहेंगे हमने सचमुच की भट्टी की। तो भट्टी आज खत्म नहीं होने वाली है, फिर कल से आपकी नई भट्टी शुरू होने वाली। प्रस्थान माना ही आपकी नई भट्टी के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं। सही है ये बात? सही है। तो ये आपको करना है, तब हम कहेंगे इतने सारे सच्चे हीरे धरती के जब चमकने लग जाएंगे तो बाप की प्रत्यक्षता दूर नहीं। ओम शांति।
देखा।